जैसे ही अन्वय पीछे पलटा, पीछे खड़ी आन्या से टकरा गया और आन्या के कदम लड़खड़ा गए। गिरने के डर से उसके हाथ आगे बढ़े। अन्वय ने उसे गिरता देख झट से उसकी कमर पर अपनी बाह लपेटकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आन्या की हथेली उसके सीने से जा टकराई। अन्वय का दिल धड़क रहा था। आन्या उसके सीने पर ठहरी अपनी हथेली से उसकी धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। उसने घबराकर नजरें उठाई तो अन्वय की गहरी काली आंखों से जा टकराई। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। नीचे पान की दुकान पर बजते रेडियो में गाना बज रहा था, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, हम सफर हम रास तू, जिस्म मैं और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा, नैनों ने बांधी। पूरे गाने के दौरान अन्वय और आन्या एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। गाना बंद हुआ, साथ ही एंकर की आवाज़ आई जिससे अन्वय की तंद्रा टूटी। उसने आन्या पर से नजरें हटाते हुए कहा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ से आन्या भी होश में लौटी और हड़बड़ाहट में उस पर से नजरें हटाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। अन्वय ने आन्या को ठीक से खड़ा कर दिया। आन्या झट से दो कदम पीछे हट गई। दोनों ही असहज हो गए थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। अन्वय ने इस स्थिति से निकलने के लिए तुरंत ही आन्या के बगल से निकलते हुए कहा, रूम में आकर ब्रेकफास्ट कर लो, देर हो रही है। आवाज़ सुनकर आन्या ने उसकी तरफ देखा और अपने बगल से निकलने वाले अन्वय का हाथ थामकर उसे रोक लिया। अन्वय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये एहसास उसे अपने साथ बहने पर मजबूर कर रहे थे। उसने खुद को संयमित करते हुए फिर से कहा, हमारी अपॉइंटमेंट है आन्या, देर हो जाएगी। अगर अभी तुम ऐसे ही यहाँ से चले गए और मैं तुम्हें मना नहीं पाई तो शायद बहुत देर हो जाएगी, आन्या ने संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर अन्वय ने मुड़कर उसे देखा। आन्या ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहना शुरू किया, पहले कभी कोई नाराज़ नहीं हुआ। मिसेस सिन्हा और पापा दोनों तो हमेशा ही गुस्से में रहते थे। लाख कोशिश करती थी उनको खुश करने की, पर उन्हें मुझ में मेरे हर काम में सिर्फ कमियां ही नज़र आती थीं। अजय था, पर उससे भी कभी रूठने मनाने जैसा रिश्ता नहीं बन सका। मिसेस सिन्हा मुझे उसके पास ही नहीं जाने देती थीं। कुछ वक्त मिलता था साथ में तो दोनों में से कोई न कभी रूठने में वक्त बर्बाद करता था, न मनाने की कोशिश करनी होती थी। मुझसे कभी कोई खुश नहीं रहा, आया ही नहीं कभी रूठों को मनाना। अगर रूठे होते तो शायद मना भी लेती, पर उन्हें तो मुझसे नफ़रत थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो नाराज़गी है वो भी नफ़रत में बदल जाए और तुम भी मुझसे नफ़रत करने लगो। मैं नादान हूँ, बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, पर मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं कहती मैं। तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, उतने जितने जीने के लिए सांसें। तुम जितना मेरे बारे में सोचते हो कभी किसी ने नहीं सोचा। तुम्हें मेरा दर्द दिखता है, पर किसी और को ना कभी मेरा दर्द दिखा ना आंसू। तुम तपती धूप में मिला हो घना पेड़ हो मेरे लिए, जिसकी छाया में मैं सुकून पाती हूँ, जो मुझे तपती धूप से बचाता है। भगवान ने मुझे तुमसे मिलाकर मेरी मुश्किलों से भरे सफ़र को आसान कर दिया है। बहुत ज़रूरी हो तुम मेरे लिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। गलती हो गई मुझसे, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, पर अब तो गलती हो गई ना, माफ़ कर दो मुझे। तुम्हारी नाराज़गी मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हमारा रिश्ता ही क्या है जो मैं तुमसे नाराज़ होने का हक़ रखूँ। अन्वय के कहे शब्द सुनकर आन्या की आंखें भर आईं। उसने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुम मेरे हमदर्द हो, हमराही हो। तुम्हारे साथ मैं अपने इस नए सफ़र को तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हूँ। हम सफ़र हो तुम मेरे, जिसने इस सफ़र में मेरा हर कदम पर साथ दिया है। वो शख्स हो जिसे मिलकर ही मुझे लगने लगा था जैसे किसी अपने से मिल रही हूँ, जिससे मैं अपने दिल की हर बात बिना सोचे समझे कर देती हूँ। लोगों की इस भीड़ में तन्हा थी मैं, फिर मुझे तुम मिले, अपने से लगने वाले अजनबी। बहुत ख़ास हो तुम मेरे लिए, हक है तुम्हें मुझसे नाराज़ होने का। क्यों हूँ मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट? अन्वय की निगाहें आन्या के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसका सवाल सुनकर आन्या खोई हुई सी बोली, पता नहीं, शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता है मेरा तुमसे, तभी इतने लोगों में तुम आई मेरी मदद के लिए आगे। तभी तुम मुझे बहुत अपने से लगते हो, जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या और क्यों है, मुझे बस इतना पता है कि सिर्फ एक तुम हो मेरे पास जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं। उसकी बातें सुनकर अन्वय कुछ पल उसकी आंखों में झांकते हुए उसके मन को पढ़ने की कोशिश करता रहा, पर उसके दिमाग में सिर्फ उसके ही ख्याल थे। अन्वय ने उस पर से नजरें हटाते हुए कहा, ओके फाइन, नहीं हूँ तुमसे नाराज, चलकर नाश्ता करो, उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है। तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो ना? आन्या ने उसके हाथ को पकड़े हुए ही सवाल किया तो अन्वय ने नामे सर हिला दिया। आन्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झट से उसके गाल को चूम लिया और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच, तुम बहुत 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 अच्छे हो। अन्वय उसके इस अचानक प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया था।